कुश कुश की, काश तथा कांस की, मयम निर्मित, बरही आसनी, आस्तीर्य फैलाकर भगवान अत्यंत पूजा की, यज्ञ पुरुषम भगवान विष्णु, लब्धानं वास धाम, यतः जिससे, भुवं पृथ्वी। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी। अनुवाद। मनु ने कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान पद पर है, उन्हें मनुष्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने राज्य तथा वैभव को श्री भगवान की देन समझकर सदैव भक्ति में तल्लीन रहते थे। इसी प्रकार से मनु की संतान अर्थात मनुष्यों को, आशा करते जो सुन रहे सब मनुष्य ही है, इसलिए आपके लिए कह रहे हैं। इस प्रकार से मनु की संतान अर्थात मनुष्यों को, विशेषकर उच्च पदों पर आसीन लोगों को समझना चाहिए कि समस्त ऐश्वर्य श्री भगवान द्वारा प्रदत्त है। उन्हें इस ऐश्वर्य का सदुपयोग यज्ञ संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करने में करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य के सदुपयोग की यही विधि है। भगवान की कृपा के बिना किसी को धन, ऐश्वर्य, उत्तम जन्म, सुंदर शरीर या अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। अतः जिन्हें ये सुविधा प्राप्त है, उन्हें चाहिए कि भगवान की पूजा करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे और जो उन्हें प्राप्त है उसे भगवान को समर्पित करे। जब किसी परिवार, राष्ट्र या समाज द्वारा इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है तो उनके वास स्थान वैकुंठ के समान हो जाते हैं और वे संसार में व्याप्त तीनों तापों से मुक्त रहते हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता ज्ञापित करने के लिए ही कृष्ण भावानुरोध का ध्येय सबके लिए रखा गया है। जिसके पास जो कुछ है उसे भगवान के अनुग्रह से प्राप्त दान समझना चाहिए। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि कृष्ण भावानुरोध के माध्यम से भक्तिमय सेवा में लगे। कोई भी चाहे वह ये न, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च, श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। मदेक बंधु मत संगी मत गुरु मत महांधन मत निस्तारक मत भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु ना दायिन नाति नीचो ततारक हान मुंच कदाचिन मां प्रेमना हृत्कंठ यो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद, यहां कर्दम के द्वारा जो सृष्टि प्रारंभ हो रही है उसका वर्णन किया गया, उनका परिणय का। और स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति का कन्यादान किए और तत्पश्चात फिर वे लौटकर अपने बहिष्मती, कल श्लोक में था ना बहिष्मती, अभी माहिष्मती एक प्रसिद्ध था, आप लोग नहीं जानते, जो लोग जानते वो समझेगा। यहां बहिष्मती है। इस बहिष्मती राज्य में जैसे ही स्वयंभू मनु प्रवेश किए तो स्वयंभू मनु ऐसे स्वयं भी भगवान के विभिन्न अवतार होते हैं, तो उसी में से मनवंतरा अवतार भी कहा जाता है। तो भगवान की ही एक विशिष्ट शक्ति से आवेशित वे अवतार है स्वयंभू मनु, कुछ साधारण नहीं। और वे जिस स्थान पर गए उस स्थान की महिमा को यहां बतलाया जा रहा है, लगभग पिछले 2-3 श्लोकों से ही। तम आयांतम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्ता प्रजापतिम गीत संस्तुति वाद्यत्रयी प्रत्युदीयु प्रहर्षिता। जैसे ही वहां कर प्रजा को पता चला कि स्वयंभू मनु का आगमन हुआ है तो समस्त प्रजा अभिवादन की, स्वागत की, किस प्रकार से तम आयांत अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्त प्रजापतिम अपने पति अपने राजा के आगमन के समाचार सुनते रहो। गीत संस्तुति वादित्रयी प्रत्युदीयु प्रहर्षिता, किस प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि का अभिवादन करना चाहिए। राजा भगवान का प्रतिनिधि है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, तो गीत संस्तुति वादित्रयी अलग अलग प्रकार के वाद्य संगीत से और अलग अलग स्तुतियों से वे राजा का स्वागत किए। प्रहर्षिता अत्यंत प्रसन्न थे राजा के आगमन से। और राजा प्रवेश किए उस नगरी में, तो जिस नगरी का वर्णन कल आप परम पूज्य चंद्रवंशी प्रभु जी के मुख से भी सुने, बाहिष्मती नाम पूरी सर्व संपत समन्विता निपतन्यत्र रोमाणी यस्यांग विधुन्वत मुहुरह रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद् भागवत यह रसम आलयम, रस का आगार है या संपूर्ण रस से पूर्ण है, रस से ओतप्रोत है। और वहां पर आचार्यगण उसकी व्याख्या में कहते कैसा रस से भरा हुआ है, जिस तरह से यह श्रीमद् भागवत कैसे आम के फल के समान है। और कैसा फल है, गलितम फलम, गलितम मतलब एकदम परिपक्व हो चुका है, जो बिल्कुल एकदम नीचे गिरने के लिए तैयार हो ऐसा फल। तो और कैसा फल है जो रस से पूर्ण हो, जिसमें छिलका भी नहीं और गुठली भी ना हो। आपने कभी ऐसा आम देखा है? ऐसा आम जिसकी छिलका नहीं है। आप बोलेंगे फिर वो टिकता कैसे, छिलका नहीं है, रस से भरा हुआ है, इसीलिए उसे अचिंत्य कह सके। आप बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे जब तक आपके हृदय में भक्ति ना हो, क्यों छिलका भी नहीं उसमें गुटली भी नहीं, ऐसा एकदम रस से भरा हुआ है। यहां हरिश्चित्तम समाश्रयित, जिस तरह से पहला तो है कि भागवत पुराण है जिसे अमल पुराण कहा गया है, रस से पूर्ण है। रस से पूर्ण का अर्थ है कि जिसमें कोई भी त्याज नहीं है, इसमें कोई भी एक भी लाइन या एक भी श्लोक जिसको बोलते शिल्लक, शिल्लक मराठी में अनावश्यक फालतू का कुछ एक्स्ट्रा लाइन बोल दी, ऐसा कुछ नहीं। हमारा ये अनुभव है जितना अधिक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं, भगवान की अनुभूति होती है, उसका एक तुरंत एक परिणाम होता है, भक्ति परेश पर ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र, कि जो भगवान के नाम रूप का आस्वादन करता है उसका प्रथम लक्षण यही होता है कि उसे संसारी फिर चर्चा क्रमशः उसकी कम होने लगती है, जिसे आप प्रजल्प कहते हैं, मतलब अनावश्यक अपनी वाणी का उपयोग नहीं करता है जो भगवत चर्चा से युक्त न हो, और ऐसी बातें ना सुनना पसंद करता है ना कहना, ग्राम में वार्ता ना कही वे, ग्राम में वार्ता ना सुनी वे, जिस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु भी रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दिए। तो फिर हर शब्द हर वाक्य के पीछे के जो आंतरिक भाव को ग्रहण करना आवश्यक है, चंद्रवंशी प्रभु के मुख से पीठ स्थान कहते हैं, भगवान से संबंधित जो स्थान हो उसको पीठ कहते हैं। जैसे आप मायापुर में जाते योग पीठ का दर्शन करते हैं, भगवान की प्रकट स्थली, तो स्वयंभू मनु जी स्थान पर रहे हैं, वह भी अत्यंत विशेष स्थान है। और श्री रूप गोस्वामी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भी इस बात का वर्णन किया है, निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते, क्षमा कीजिए उसके पूर्व भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय में वहां पर श्रील प्रभुपाद वर्णन किए कि भगवान से संबंधित जो भी वस्तु हो वह भी भगवान के समान ही पूज्य हो जाती है, जिसे तदीय कहा जाता है, न हरि संबंधी वस्तु न भी कहा जाता है, परंतु तदीय शब्द का श्रील प्रभुपाद व्याख्या की है भक्ति रसामृत सिंधु में, जब उत्तम भक्ति की परिभाषा हुई आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, तो वहां पर कृष्ण शब्द की व्याख्या जब रूप गोस्वामी की है तो कृष्ण शब्द की व्याख्या क्या करते हुए, भक्ति किसे कही गई जब शरीर मन वाणी से कृष्ण की सेवा की जाए, तो कृष्ण शब्द का अर्थ उन्होंने चार बताया वहां पर। कृष्ण मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो आदि भगवान है, समस्त अवतारों के उद्गम है, जिन्हें सूद गोस्वामी कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहे, वे कृष्ण की सेवा करना भी भक्ति है। फिर दूसरा वहां पर अर्थ बताया कृष्ण अर्थात कृष्ण के जितने अवतार है, रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेश, किंतु इन समस्त अवतारों की आराधना करना, इन समस्त अवतारों की सेवा करना भी शरीर मनवाणी से वह भी भक्ति का अंग है। और फिर अंततः फिर तीसरा बताया कि जितना भी कृष्ण से संबंधित जो सामग्री है, कृष्ण से संबंधित प्रत्येक जो वस्तु है जो भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग की जाती है, भगवान का भोग है, भगवान की आरती की थाली है, क्या कहते उसे उपादान, उपादान कहा जाता है, अलग अलग प्रकार की जो सामग्री होती है जिसे अंग्रेज में पैराफेनिलिया कहते हैं, जो भगवान से संबंधित हो वह भी भगवान के समान ही पूज्य हो जाती है, तो उनका भी उतना ही आदर। जिस प्रकार इसीलिए हम जब भगवान की सेवा करते कोई भी वस्तु का, जब कल शायद कोई भक्त चर्चा कर रहे थे, कहां पर चर्चा पता नहीं, मैंने अप्रत्यक्ष रूप से सुना, मंदिर में विश्व से हम कोई भी वस्तु को जब उपयोग करते हैं तो आवश्यक होता है उस वस्तु का पैर नहीं लगाते, हाथ से उठाया, जैसे दरी को भी अगर आपको ठीक करना है तो ऐसे कुछ कल चर्चा हो रही थी, क्योंकि वह वस्तु भगवान से संबंधित होती है, इसलिए वहां भी वंदनीय और पूजनीय हो जाती है। तो उन वस्तुओं की ठीक तरह से सेवा करना, जैसे मृदंग को अच्छी तरह से रखना, करताल को अच्छी तरह रखना, भगवान की आरती की प्लेट को अगर धो रहा है, तो इंद्रानुष्प्रु यदि भगवान के क्या कहेंगे एल्टर गर्भगृह में भगवान की आरती कर रहे हैं और पीछे अन्य भक्त यदि भगवान की आरती की प्लेट को धो रहा है, तो दोनों एक ही समान है। ऐसा नहीं कि भगवान के अधिक समीप है, विग्रह के समीप हुआ उसे भक्त कहेंगे और अन्य सेवाओं को भक्ति में नहीं रहे। तो रूप गोस्वामी इसीलिए परिपूर्ण व्याख्या किए ताकि यह समस्त अंग फिर भक्ति की परिभाषा में सम्मिलित हो। और फिर चौथा शब्द उनका कृष्ण, कृष्ण के समस्त अवतार अंश कला आदि, फिर कृष्ण की सामग्री, और चौथा उन्होंने कहा कि कृष्ण के भक्त, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर है, चतुर वपु नाम एक कहते हैं, इस तरह कहते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत, भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु, हाँ भक्त भक्ति भगवंत गुरु, हाँ ये नाम चार है परंतु व्यक्ति एक ही है, इसलिए चारों की वहां पर वंदना करते आचार्य मंगलाचरण में। तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्थान है ये बहुत विशेष स्थान का वर्णन किया, बाहिष्मती नाम पूरी सर्व संपद समन्विता, बाहिष्मती जो यह नगरी समस्त संपदा से पूर्ण थी, समृद्धि से पूर्ण। क्या विशेषता थी इसकी, तो उसको फिर दूसरे पंक्ति में कहा गया है श्लोक में। से भागवत कक्षा की अलग शैली होती है, भागवत कक्षा जो कुछ भक्त उन शब्दों का अर्थ का आस्वादन करना चाहते, कुछ लोग अनुवाद को पढ़कर उसके अर्थों को समझना चाहते, और कुछ भक्त फिर आचार्य द्वारा दिए तात्पर्य की अधिक विश्लेषण करते। तो कल आप तात्पर्य को सुने थे, श्लोक 6 छूट गया था। तो हर भक्त का अलग अलग अपना भाव होता है, जैसे आप देखेंगे जब मधुपति प्रभु अगर रुक्मिणी द्वारकाधीश का श्रृंगार करे तो अलग होता है, पद्मनाभ प्रभु करते तो श्रृंगार अलग होता है, या वैदर्भ चरण प्रभु का श्रृंगार तो अलग होता है। भगवान एक है, वस्त्र भी वही है, परंतु हर भक्त के एक विशेष भक्ति के अनुसार भगवान अपने सौंदर्य को प्रकट करते हैं। जैसे पद्मनाभ प्रभु की भक्ति प्रकट होती है जब आप आज सुबह दर्शन करते हैं, फिर कभी अन्य कोई भक्त श्रृंगार करे तो उनकी जो भगवान के प्रति प्रेम है वहां प्रकट होता है। तो ऐसे ये भागवत का श्लोक आपने कल भी सुना था जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, बाहिष्मती नाम पूरे सर्व संबंध से परिचित, न्यपतन न्यत्र रोमाणी यज्ञस्यांग विधुन्वतः। क्या विशेषता थी इस बाहिष्मती की, इसको बाहिष्मती बाहिर बाहिर शब्द है, बाहिर बहिर बहिर भी कहते हैं, फिर कुश भी, दो ऐसे शब्द हैं एक ही इसके लिए प्रयोग किए गए, विश्व से पूजा में प्रयोग किया था कुशग्रास, परंतु कुशग्रास का किस तरह का उद्गम है, यहां पर न्यपतन यत्र रोमाणी यज्ञस्यांग विधुन्वत। प्रमुख रूप से जब भगवान इस धरातल में प्रकट हुए संसार में, ये स्वयंभू मनु के लिए इस जीवन से संबंधित है, कुछ ही दिनों पूर्व स्वयंभू मनु ने जिन भगवान के दर्शन किए थे, कर्दम मुनि के साथ अपने पुत्री का विवाह करने के पूर्व जो एक लीला संपन्न हुई, विश्व से भगवान वराह देव का अवतार, और उस वराह अवतार में उस लीला से संबंधित यह स्थान था, इसीलिए इसको बाहिष्मती कहा जाता है। क्या विशेषता थी, तो उसी को भागवत के तृतीय स्कंद के उन श्लोकों को देख रहा था, जब भगवान वराह देव प्रकट हुए, भगवान वराह देव हिरण्याक्ष का संहार किए, जो बाह्य रूप से एक शुकर रूप को प्रकट किए भगवान, परंतु जितने भगवान के भक्त हैं वे भगवान को पहचान लेते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को वे समझ लेते हैं। जिस प्रकार से इस संसार में आप देखते कि गाय या बछड़े का उदाहरण दिया जाता है, क्या आप देखेंगे कि जो बछड़े का अपने माँ के प्रति जो प्रेम होता है गाय के प्रति, यदि लाखों में भी उसकी माँ जो गाय है और हजार गाय रहेंगी तो उसमें भी अपनी माँ कौन सी तुरंत पहचान लेता है, उसे पहचानने में देरी लगती है। वैसे भक्त जो है भगवान किसी भी रूप को अपने प्रकट करे परंतु वे समझ लेते हैं। तो समस्त ऋषिगण वहां पर भगवान की वंदना किए। तो दो श्लोकों को मैं यहां अभी देख रहा था आते समय। जितम जितम ते अजित यज्ञ भावना त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद रोम गरते शुनिलील्यूर्धय तस्मै नमः कारण सुकरायते। कि वहां पर समस्त ऋषिगण कहते हम उन भगवान के दिव्य स्वरूप शुकर का नमस्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। जितम जितम मतलब जय हो आपकी जय जयकार हो, आपने हिरण्याक्ष का वध किया है तो आपकी जय जयकार हो। किस तरह का आपका रूप है तो विषम से भगवान जो है मूर्तिमंत वे त्रयीम तनुम, त्रयी मतलब वेद, वेद जो तीन गुणों का वर्णन करते हैं इसलिए उनको कभी त्रयी भी कहा जाता है। त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते स्वम, कि विषम से आपका ये तनु क्या है, आपका तनु मतलब यह मूर्तिमंत वेद ही है। भगवान वराहदेव को जो यज्ञ पुरुष भी कहा जाता है, आज शब्द है ना यजते यज्ञ पुरुषम ऐसे ना, अने अशमक अयजत पास्ट टेंस है, अयजत यज्ञ पुरुषम भूतकाल। त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः, कि प्रमुख रूप से आप का ये जो देह है यह साक्षात वेद का मूर्तिमंत स्वरूप है। और रोम गतेषु निलील्य निलील्यु आद्य अद्य, और विश्व से आपके जो रोम छिद्र है, जितने भगवान के वराहदेव के रोम छिद्र है उनसे क्या प्रकट होते, कहा था उनसे समस्त समुद्र प्रकट होते हैं। कैसा भगवान वराह भगवान का जो स्वरूप है, उनका देह मतलब मूर्तिमंत वेद, उनके रोम छिद्र मतलब समुद्र है। जैसे अन्यत्र यहाँ तात्पर्य रूपात स्मरण करते हैं महाविष्णु का, महाविष्णु के एक एक रोम छिद्र से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, तो यहाँ पर तो केवल समुद्र का वर्णन किया जा रहा है कि आपके रोम छिद्र समुद्र के समान है। और आपने इस पृथ्वी को अपने दंत पर धारण किया है। फिर आगे कहते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनाम दुर्दर्शनम देव यद्वदरात्मकम छंदांसि यस्य त्वचि बर्हि रोम स्वाज्यम दृशित्वं गृषु चार्तु होत्रम। कि आपका यह जो वे वास्तव आपके इस रूप की दिव्यता को नहीं समझ सकते हैं। छंदांसि यस्य त्वचि बर्हि रोम, जितने छंद मतलब जितने वेदों के अलग ऋचाए है, जितने अलग गायत्री आदि छंद है, ये क्या है तो वास्तविक हे भगवान आपकी त्वचा है इस तरह का। और त्वचि बर्हि रोम, और फिर उस अंग में आपके ये जो शरीर है इस दिव्य सच्चिदानंद शरीर में आपके केश जो बाल होते हैं वो क्या है कुश, ये कुश घास का जो वर्णन कुश काश में आया था ना इसलिए मैं ये पढ़ रहा था। त्वचि बर्हि रोम मतलब बर्हि रोम स्वाज्यम स्वाज्यम दृशी, आपके नेत्र, ये यज्ञ में जो आहुति के लिए घी प्रयोग किया जाता है वह आपके नेत्र है, और आपके शरीर के जो केश है वह कुशा घास है। तो अंग्रीषु चार्तु होत्रम, और फिर आपके जो चार पैर है सुकर है, चार पैर होते ना मतलब वे कहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार भगवान के ही चरण है इस तरह का वहां पर ऋषि मुनि वहां वर्णन किए। तो यह नगरी कैसी थी वहां बताया गया, भगवान वराहदेव जब प्रकट हुए तो भगवान वराहदेव ने रसातल में गए, पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का संहार किया। तब भगवान बाहर जब आए तो भगवान का शरीर गीला था, तो गीला था भगवान ने अपने शरीर को जोर से हिलाया। न्यपतन न्यत्र रोमाणी यज्ञ स्यांग विधुन्वता, विधुन्वता मतलब बहुत जोर जोर से जब हिला रहे थे इस तरह से। अब एकदम भौतिक तुलना नहीं किया सकते, परंतु कभी आपने देखा गटर में से सुअर तो किस तरह से वो हिलाएंगे तो आपके ऊपर सब गंदगी उड़ेंगी, परंतु ये दिव्य भगवान थे। तो यह भगवान भी अपने शरीर को हिलाने लगे तो भगवान के रोम भगवान के जो केश थे वे गिर गए वहां पर, और जिस स्थान पर वो केश गिरा वो हुआ बाहिष्मती राज्य। कल्पना की भगवान का एक केश भी यदि आपको मिल जाए तो वही दिव्य है ना भगवान से अभिन्न। आप देखिए अलवारों की कथा सुनते हैं आप, जो कोई वंशी का अवतार है तो कोई भगवान के अलग चक्र का अवतार, भगवान के शंख का अवतार, भगवान के एक एक जो अलग अलग शस्त्र है, भगवान के अलग जो भी वस्तु है वे भी अवतार के रूप में प्रकट होते थे। ये भी भगवान का केश था, भगवान का केश जहां पर गिरा, कुशाकाशस्त एवान सन शश्वत हरितवर च सह ऋषये पराभाव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ मी जिरे। ये कल का श्लोक में पढ़ा था। तो ऐसा ये कुशाकाशस्त, ऐसे कुश ग्रास से, तो कुश ग्रास कुछ नहीं स्वयं भगवान का विशेष अंग का ही एक भाग है। और इसलिए भगवान की विभूति गाय श्रीमद भागवत के एकादश स्कंद में भी विभूति योग का वर्णन किया है। जिस तरह से भगवत गीता में विभूति योग है, वैसे ही भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव गीता में भी विभूति योग आता है। तो वहां पर भी लिखा है रत्नानाम पद्मरागोस्मी पद्मकोश सुपेश साम। रत्नानाम मतलब रत्नों में पद्मराग रूबी, रूबी को हिंदी में क्या कहेंगे, एक विशेष रत्न होता है जिसको रूबी कहा जाता है। रत्नानाम पद्मराग उसमें भगवान कहते हैं कि समस्त रत्नों में मैं पद्मराग रूबी हूं। पद्मकोश सुपेश साम और अत्यंत सुंदर जो वस्तु उसमें पद्मकोश, पद्मकोश मतलब कमल का पुष्प, सुंदर जो दिखने लोग दिखने लायक वस्तु उसमें कमल, रत्नों में मैं पद्मराग, कुशों में दर्भ जाति नाम, और दर्भ में मतलब घास में कुश ग्रास जो है वो मेरा ही स्वरूप है। गव्यम माज्यम हविश्वहम, और जो यज्ञ में आहुति के लिए जो घी प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से गव्य आज्यम मतलब देसी गाय का घी है, डालडा नहीं, देशी गाय घी जो भगवान का ही विभूति है। इस तरह भगवान वहां पर भी कहे तन शब्दों में हम देखते हैं कि विश्व से जो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते कुश, इस कुश शब्द को मैं बार बार विचार कर रहा था, बाकी तो देखने को उतना समय मुझे नहीं मिला। भगवान भी कहते हैं भगवत शुचो देश प्रतिष्ठाप स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैला जीन कुशोत्तरम। वहां भी शब्द आते हैं भगवान जब कहे कि किसी किसी को समाधि प्राप्त करने तो क्या करना चाहिए, शुचौ देशे, शुचौ मतलब अत्यंत पवित्र स्थान होना चाहिए। जो पवित्र भगवान की प्राप्ति करना चाहता है पहले स्थान को पवित्र करना बहुत आवश्यक है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य अच्छी तरह बैठ जाए, कौन सा स्थिर आसनम, आसन स्थिर होना चाहिए, ऐसा नहीं 10-12 ऐसे बैठ रहे ऐसे बैठ रहे। हमारे तो भागवत क्लास में इतने आसन हम बदल लेते हैं, स्थिर आसन हम नहीं है। परंतु समाधि किसे प्राप्त होती है, जो आसन को जीतता है वह समाधि प्राप्त करता है ना। तो शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति उच्चे नाति उच्छ्रितम नाति नीचम। कैसा आसन होना चाहिए, बहुत ऊंचा ना हो परंतु बहुत नीचा भी ना हो। कैसा, चैलन जीना कुशोत्तरम, तीन बातें कहते हैं ना, मतलब एक तो चैलन मतलब डियर स्किन, मृग मृग चर्म कहते हैं, मृग चर्म हो, मृग चर्म के क्षमाई प्रभुपाद से प्रवचन में अपने अलग बताए, मतलब पहले कुश ग्रास हो फिर उसके ऊपर मृग चर्म हो और उसके ऊपर वस्त्र हो, ये तीन वहां पर वर्णन किया गया। आजकल तो मंदिरों में भी प्लास्टिक का वो आसन आगे कहीं वर्णन है ही नहीं ऐसा कि प्लास्टिक का आसन वगैरह चला रहे, तो उसके ऊपर खड़े होकर आरती भी करते हैं, गुरु पूजा वगैरह सब चलती है, परंतु उसको पवित्र नहीं कहा गया। ये तो पवित्र जो कुश घास होता है, कुश घास का जो आसन रहता है, तो उस पर भगवान भी इस बात को गीता में कहे। और फिर मैं विचार कर रहा जितने भी अलग अलग भक्त जो भगवान का भजन किए वो आसन को बहुत शुद्ध रखे, तो कुश घास का ही था। यहां तक कि ये अभी आगे चल के कपिल उपाख्यान में आएगा, कपिल भी सांख्य योग का वर्णन करते हैं, तो वहां पर भी ऐसे ही शब्द जैसे गीता में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजु काय समभ्य से, तुम्हारी कि पवित्र स्थान पर विजित आसन, अपने आसन को जीत कर बैठे। और कैसा वो स्थान हो, विशेष रूप से जो कुश ग्रास से बना हो, इस तरह से वो स्थान को पवित्र किया जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखे, द सीट शुड कंसिस्ट ऑफ डियर स्किन कुशा ग्रास टॉप विथ कॉटन। इसको कॉटन को ऐसे पवित्र कहा गया, तो उसको ऊपर रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भी जब कौन था वो श्रृंगी था ना, जिसने श्राप दिया था, श्रृंगी के श्राप को सुनने के पश्चात जब परीक्षित महाराज ने संकल्प लिया कि वे अपने मृत्यु की तैयारी करेंगे, तो वहां पर वे भी गंगा नदी के तट पर पहुंचे और गंगा नदी के तट पर पूर्व दिशा की ओर किया हुआ जो कुश ग्रास घास का आसन था उस पर वे बैठ गए। जो 7 दिन 7 रात जो आसन लिए थे वे, वो आसन का वर्णन वहां पर भी प्रथम स्कंद में भी गए। और उस मतलब विशेष रूप से जो कुश जो घास होता है, यदि वो पूर्व दिशा की और इफ द रूट इज पॉइंटेड टुवर्ड द ईस्ट, इट इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, प्रभुपाद लिखते हैं, उसे अत्यंत मंगलमय कहा गया है। और फिर समस्त यज्ञों में भी इस कुश घास का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से जब पृथु महाराज भी यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे ना, इंद्र बार बार जब घोड़ा चुरा है, तो वहां भी कहते व्यंजिन व्यंजिता शेष गात्र श्री नियमे न्यस्त भूषण कृष्ण जी नधर श्रीमान कुशपाणी कुतो उचित। जब यज्ञ के लिए दीक्षित हुए और वो जब आसन पर बैठने लगे, तो मृग चरम पर ऊपर कुश घास लेकर वो बैठ गए और फिर उनके उनको अंगूठी पहनाई गई, कुश पाणी का, कुश पाणी मतलब वो कुश घास की अंगूठी रहती है, जो यज्ञ में दीक्षित होता है उनको पहनाई जाती है इस अनामिका में, जो पवित्रता का लक्षण है। तो ऐसा ही ये कुश घास जो है अत्यंत पवित्र, कुश काशमयम इस शब्द को मैं देख रहा था, तो ऐसे कुश से बना हुआ था। और उस समय मतलब स्वयंभू मनु के समय और आगे चल के फिर अन्य राजा का जब वर्णन चतुर्स्कंद में आएगा, प्राचीन बरहिषद नामक जो राजा का वर्णन किए हैं, उनके समय भी ऐसा कुश काशमयम मतलब इतने अधिक यज्ञ वे करते थे। और एक नियम होता है यज्ञ में कि ऐसा नहीं कि एक ही आप जो एक ही आसन को बार बार प्रयोग नहीं करते, आसन बनाए उस पर बैठ कर आप यज्ञ हुआ फिर यज्ञ छोड़ दिया आसन, फिर नया आसन लेना पड़ेगा, ऐसा हम तो एक ही आसन को प्रयोग करते रहते हैं। तो ये चाहे स्वयंभू मनु या प्राचीन बरिषद के समय भी वहां वर्णन किया गया है, वहां पर आस्तीर्य दर्भई प्रागग्रही कास्नेन शितिमंडलम स्तब्धो बृहद वदान मानी कर्म नावेश यत परम। नारद मुनि जब प्राचीन बरिषद कहे तो बोले कि तुम्हारी क्या विशेषता है, तुमने आस्तीर्य, आज भी शब्द ना आस्तीर्य, वहां पर भी आस्तीर्य, आस्तीर्य दर्भई, हम सभी विदर्भ में हैं, तो विदर्भ शब्द का अर्थ मुझे आज ही पता चला, विदर्भ क्यों कहा जाता है, वैदर्भ भी कहते हैं ना, दर्भ मतलब वैसे कुशाघास को कहा जाता है। तो जहां के लोग कर्म कांड में दक्ष हो, विशेष कर्म कांड पूजा में दक्ष है, तो उसको तो विदर्भ, जहां पे कर्म कांड पूजा बहुत अधिक की जाती है, यज्ञ अनुष्ठान आदि बहुत अधिक होते हैं, उसको विदर्भ है। कुश काशमयम जहां सर्व संपदशील प्रभुपाद तात्पर्य प्रयोग के तल्लीन हो।